राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 मई 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम
राम राम राम। नारायण 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 राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता एक बड़ा अलौकिक विलक्षण ग्रंथ है। इसको सब लोग मानते हैं, बड़े बड़े बुरी संप्रदाय वाले भी, ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, ऐसे हिंदुओं के सिवाय दूसरे भी इसको आदर से देखते हैं। ऐसे हिंदू भी नहीं पढ़ते, ऐसे मुसलमान भी सब नहीं पढ़ते, परंतु जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वे हिंदू होते हुए भी नहीं पढ़ते हैं और अहिंदू होते हुए पढ़ते हैं। परंतु जिसको पता लग जाएगा गीता का, कुछ ज्ञान हो जाएगा, तो गीता में आकर्षित हो जाएगा। पुस्तकों के प्रचार में देखा है तो बाइबल का बहुत प्रचार हुआ है। बाइबल की पुस्तकें जितनी छपती है, इतनी किसी की पुस्तक नहीं छपती, कोई पुस्तक नहीं छपती। तो वे बाइबल की पुस्तकें छपती बहुत है, राज का हाथ है, पैसा पानी की तरह पाया जाता है और कई भाषाओं में अनुवाद हो गया है, पर व्याख्या नहीं हुई है। बाइबल कुरान आदि कोई व्याख्या नहीं है, गीता पर व्याख्या हुई है, इतनी किसी पर नहीं हुई। जितनी टीकाएं हुई है गीता पर हुई है। पुस्तक शब्दी नकल कर दी, कई भाषाओं में नकल हो गई उसकी, हिंदी में हो गई, अंग्रेजी में हो गई, उर्दू में हो गई, कर्नाटक में हो गई, सब भाषाओं में हो गई। तो ऐसे केवल वो अनुवाद हुआ है, उसका ट्रांसलेशन हो गया, पर उस पर कोई विचार हुआ हो गहरा, ऐसा नहीं। गीता पर बहुत गहरा विचार हुआ है, सबसे संप्रदायों का, आचार्यों का, बड़े बड़े नामी आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी आदि आदि बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों ने भी गीता का सार लिया है, गीता और 10 उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान त्रय है मानो मार्ग चलते परमात्मा तक पहुंचने के लिए। वैदिक प्रस्थान है वे उपनिषद है, और दार्शनिक प्रस्थान है वे ब्रह्म सूत्र है, और जो पौराणिक इतिहास का प्रस्थान है वो है भगवद गीता। तो वैदिक प्रस्थान है उसका उपनिषद है, उनका सबको अधिकार नहीं है पढ़ने का, और गहरा विषय है वेदों का। इधर दार्शनिक है तो ब्रह्म सूत्र है, वे बड़े गहरे हैं, हरेक आदमी नहीं समझ सकता, बड़े बड़े विद्वानों के काम की चीज है। पर तो गीता विद्वानों को भी मना हिचकते इन पर लिखते हैं और राजी होते हैं, और साधारण भी, साधारण से साधारण आदमी केवल हिंदी ठीक जानने वाला गीता पढ़ सकता है, इतना इसका संस्कृत सर्व है। तो गीता सबके काम की चीज है, सभा सामान्य है। तो प्रस्थान त्रय मानो प्रस्थान मान रास्ता चलने के बड़े बड़े रास्ता है तीन, उनमें गीता भी एक अपना वैदिक प्रस्थान उपनिषद उनके समान स्थान रखती है। इस तरह से शास्त्रीय ब्रह्म सूत्र का प्रस्थान है उसके साथ भी समकक्ष रखती है, गीता समकक्ष रहती है। तो गीता में कुछ ऐसी अलौकिक बातें हैं, अब इसमें ये श्लोक कहलाते हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र कहलाते हैं, उपनिषदों में वैदिक मंत्र है और गीता में श्लोक है। श्लोक पढ़ने का हरेक अधिकार है, हरेक समझ सकता है, पर सूत्रों के समझने में बड़ी मेहनत पड़ती है। सूत्र है तो थोड़े अक्षर हुए, अर्थ इसका बहुत भरा हुआ तो विद्वान लोग भी हिस्से उनका सभा में इसमें सीधे श्लोकों में से सीधी भाषा में सब पढ़ सकते हैं, इसको सब समझ सकते हैं। तो भगवत गीता के समान कोई दूसरा ग्रंथ लिखता नहीं। बड़े बड़े ग्रंथ है, दसवीं उपनिषद है, दो उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र बहुत बड़े बड़े है, ये 700 श्लोक है, केवल 700 श्लोक ही है, उसमें सब बातें आ गई है। तो गीता को हर एक पढ़ सकते हैं, और मार्मिक बातें जितनी गीता में कही है सरलता से इतनी कहीं मिलती नहीं, कोई पुस्तक में इतनी मिलती नहीं। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, ध्यान योग भी है, तरह तरह की बातें इसमें बताई है, और एक एक योग को कई तरह से कहा है। थोड़े छोटे ग्रंथ में होते हुए भी इसमें विषय के प्रतिपादन करने में संकोच नहीं किया, थोड़े बात कहें। ब्रह्म सूत्रों में संकोच किया, थोड़े सूत्रों में कह दे बात, छोटे छोटे सूत्रों में बहुत बात कह दे, भगवद गीता में विस्तार से कहा है। एक ज्ञान योग का वर्णन है जिसमें भी कर्ता रहित पना, कर्तृत्व रहित पना बताया, उसमें गुणागुण से वर्तन से इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन से पंचित से प्रकृति कर्माणी के एक सिद्धांत को भी कई तरह से कहा है। छोटे से ग्रंथ में कई तरह करने से विस्तार हो जाता, बड़ा पोथा बढ़ जाए, बड़ा पोथा भी पढ़ने दिया। गीता की कुछ शैली विलक्षण है, अनूप शैली है, विचित्रता से इसे प्रवर्तन होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीन तो मुख्य है भागवत एकादश में, योगास्त्रयो में वहां तीन योगों का वर्णन है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का। परंतु भक्ति योग का इसमें वर्णन गीता का वो बहुत विलक्षण योग है। इसमें शरणागति की बात बहुत विलक्षणता से बताई गई है। समत्वम योग उचिते, समत्वम योग उचिते योग कहा है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई तरह योग, अनाशक्ति योग, योग के बीच में सब आ जाते हैं। जितने साधन होते पारमार्थिक वे सब के सब योग में आ जाते हैं। उस योग के दो अर्थ किए गीता ने खास, वो एक पारिभाषिक शब्द होता है, तो उस पर समत्वम योग उचित है, एक दुख संयोग योगम योग संगीतम, संसार के साथ संबंध विच्छेद करने का नाम योग, और परमात्मा में स्थित होने का नाम योग, दोनों को योग बताया। एक होने से दोनों हो जाएगा, और इसकी महिमा बताई, योग कर्म कोई कर्म में योग ही कुशलता है, ये महिमा है, ये परिभाषा नहीं है। ऐसे गीता में बहुत विचित्र बातें बताई है, संक्षेप से बताई है, और सुमता से प्राप्ति हो जाए उसकी, कठिनता नहीं है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत उसको बोलते, ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाए, सुखम कर तुम अभ्यम सुखपूर्वक हो जाए। जहाँ कर्मयोग की और ज्ञान योग की बातें बताई है वहां दोनों को समकक्ष बताया बरोबर। यह सांख्य प्राप्त स्थानों तद योगी रूप गम्य थे, उसमें प्राप्त हो जाती है। और सुगमता बताई है, सरलता बताई है, श्रेष्ठता बताई है, अविनाशी अपना बताया है, महिमा बहुत विचित्रता से भगवद गीता की आई है। मुख्य पता तब लगता है जब स्वयं अभ्यास करे, गीता का अध्ययन करे, तो बहुत विचित्रता दिखती है गीता में, बड़ी अलौकिक तमालूम होती है, बड़ा सीधा भगवान के साथ संबंध है। ये कर्ण निरपेक्ष की बात है ना, भगवत गीता में कहा जाए तो मुख्यता से कही है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान के साथ सीधा संबंध। कर्ण सापेक्ष का अर्थ है कि दूसरे जरिए परमात्मा के साथ संबंध करना, और कर्ण निरपेक्ष का अर्थ है कि सीधा भगवान से संबंध जोड़ देना। जैसे हरे कहते भाई गुरु के कारण से होगा कल्याण होगा, मन बुद्धि लगाने से कल्याण होगा, ये सब कर्ण सापेक्ष है। भगवान के साथ तो भगवान मेरा, मैं भगवान का किसी वकील की किसी जरूरत नहीं है, बीच में कोई दलाल की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही भगवान के साथ संबंध। समझ तुम लोगों से कोई किसी तरह से आप समझा ले लो, राग द्वेष हर शोक उठा दो, वो काम हो जाएगा सिद्ध। इसमें कोई इतना मन लगाओ, इतना ध्यान हो, ध्यान योग में वर्ण में है, ध्यान योग का वर्ण है, उसमें यही बात है, मन लगाना करना कर्म सापेक्ष है, परंतु उसे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, इसमें कोई बात नहीं है इसकी। एक विलक्षणता और है कि ये जो योग भ्रष्ट होता है ना, योग करते करते योग से चर्च मना हो जाए तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, तो वो ध्यान योग के लिए योग भ्रष्ट होता है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग में योग भ्रष्ट नहीं होता है। तो सिद्धि होगी, कर्म सापेक्ष में योग भ्रष्ट होने की गुंजाइश रहती है, जहाँ कर्णों का काम है ज्ञान ध्यान योग का वर्णन है, तो गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है, पर कर्म योग में योग भ्रष्ट नहीं होता, ज्ञान योग में योग भ्रष्ट नहीं होता, भक्ति योग में योग भ्रष्ट होता ही नहीं। इसमें तो विशेष बात है, भक्ति योग की तो निष्ठा दो ही बताई गीता में, ज्ञान की और योग की कर्म की दो निष्ठा बताई है, भक्ति की निष्ठा नहीं। भगवत निष्ठ होता हो तो भक्ति की निष्ठा तो स्वतंत्र है, ज्ञान की निष्ठा और कर्म की निष्ठा की अपेक्षा भक्ति निष्ठा है, लेकिन दुविधा निष्ठा कोई निष्ठा बताई, तीन मार्ग तीन है, तो भक्ति की निष्ठा अलग नहीं है, भक्त होता है वो अपनी निष्ठा नहीं होती, भगवान निष्ठ होता है, भगवान के प्रयाण होता है, वो निष्ठा भगवान के साथ है, उसकी साधक की निष्ठा नहीं है, साधक की योग निष्ठा है और ज्ञान निष्ठा है, दो निष्ठा है, लोग निष्ठा पूरा मान्य हो, दोनों निष्ठाओं का फल एक होता है। इसमें टीकाकारों का तो मतभेद है, पर मूल में विचार किया जाए तो मतभेद नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा दोनों स्वतंत्र है, और भक्ति तो स्वतंत्र है ही, इसमें संदेह ही क्या है, सबसे विशेष भक्ति का वर्णन किया गीता में। तो गीता का संस्कृत सरल है, भाव सरल है, पर गहरा भाव इसमें बहुत है, जिसका अंत नहीं आता है। मैं तो अपने साधारण बुद्धि से जानता हूं, तो बचपन से ही कुछ गीता पर रुचि रही हमारी, मैं पढ़ता था तब तो अपने महाराज से कहता था गुरुजी से कि महाराज मेरे को तो गीता पढ़ा दो, और जरूरत नहीं है, कहते गीता पढ़ रहेगा, संस्कृत पढ़ जाए, व्याकरण पढ़ जाए, आप से आप पढ़ रहे भगवद गीता, ऐसे कर उन्होंने लोभ दिया तो मैं पढ़ाऊ, पढ़ाई करी है, पर गीता की रुचि थी, मैं रुचि के कारण से गीता का पाठ करता था, मैं जब पढ़ता तभी गीता का पाठ करता था, और गीता अभी तक पढ़ता हूँ, अभी तक गीता में नई नई बातें मेरे को मिलती है, विलक्षण विलक्षण बातें नई मिलती है, प्रत्येक वर्ष में तो अलग मिले, प्रत्येक मास में मिलती है, प्रत्येक दिन में इतना ख्याल नहीं आया है, पर विलक्षण बातें मिलती है, नई नई बातें मिलती है, नई नई सूझ। अभी कर्म निरपेक्ष की बातें चली तो इसमें बहुत विलक्षण दिखती है, हमें बड़ी अलौकिकता दिखती है, इतना ख्याल ही नहीं था हमारा, जिस किसी विषय को लेकर सब विचार करते हैं तो उसमें नया रास्ता मिलता है। एक मेरी धारणा है कि भगवत गीता का असली अभ्यास कर लेता है तो उसकी बुद्धि सर्वथोपित हो, कोई बात पूछो कोई करो उसमें भी बुद्धि निर्णय कर देगी। विवाह सगाई का वर्णन गीता में नहीं आता, परंतु गीता पढ़ा हुआ विवाह सगाई में भी अच्छी सम्मति दे देगा, लड़ाई झगड़े की बात में भी ठीक सम्मति दे देगा, उलझन होगी वो उलझन मिटा देगा, व्यापार आदि उलझन गीता से मिट जाएगी, जो जो व्यवहार में परमात्मा में उलझने आती है वे उलझने मिट जाती, ऐसी बातें विलक्षण गीता ने कही है, जिस विषय का वर्णन गीता में नहीं है उस विषय को भी जान जाएगा, वो कोई विषय सामने आएगा तो उसके विकास हो जाएगा, वाणी कुछ और ही विचित्र है, किसी विषय की शंका हो जाए और गीता का अध्ययन हो तो उन शंकाओं का समाधान हो जाएगा, और ठीक विलक्षण विलक्षण पता दिखने लगेगी, अलौकिक विचित्र बड़े आनंद देने वाली ऐसी टीका गीता में दिखती है, बातें विचित्र विचित्र बातें दिखती है गीता में, अलौकिक अलौकिक बातें दिखती है गीता में, बहुत जल्दी जीव का कल्याण हो जाए, महान पद की प्राप्ति हो जाए बहुत जल्दी और सुगमता से, जल्दी हो जाए सुगमता से हो जाए। और एक बात है कि हर एक आदमी को, कोई भाई हो कोई बहन हो, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, पढ़े हुए से पंडित से पंडित, बिल्कुल अक्षरों का ज्ञान नहीं हो, वो सब परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। पापी से पापी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। गीता में तीन योगों के लिए बताया है, अभी से सुदुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी है वो भगवत भक्त बन सकता है। दुराचारी से दुराचारी ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है। अभी से जैसे पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमा, संपूर्ण जितने पापी और सब अधिक पापी वो ज्ञान प्रवेश नहीं, वो भजन संतरी से संपूर्ण पाप उतर जाएगा। और कर्मयोग में गत संघर्ष से मुक्त से ज्ञानावस्थे से ये ज्ञान आता कर्म समग्र प्रवेश, कर्म करते ही कर्म लीन हो जाए, सब कर्मों से पड़े छूट जाता है। कर्मयोग में सब के लिए कोई योग ऐसा नहीं कि तुम इतनी पढ़ाई करो, इतने ग्रंथ करो, इतना तब आप पढ़ोगे फिर नहीं। ये तो सीधी बात है, सरल है। चाहे जिस मार्ग में चलो, गीता पूरा सहयोग देती है। ऐसी गीता की अलौकिक बात है, दिखने में तो महत्व दिखता नहीं, पर गहरा अर्थ समझे तो समझते ही चला जा, उम्र की उम्र खत्म हो जाए तो अंत नहीं आता। शिष्य जी ने गीता के अभ्यास किया और उन्होंने एक जगह व्याख्यान में दिया था, लेख में ही आई होगा बस, प्रकरण किया था, गीता पर मेरा अधिकार है, शेर जी ने कहा था। उसमें गीता में विलक्षण विलक्षण बातें, अद्भुत बातें, और उन्होंने लिखा है अपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में, तो मेरे को गीता से इतना लाभ हुआ, नाम जप के सिवाय और किसी से लाभ नहीं हुआ। भगवान नाम जप और गीता, ये तीन बार आई है शेर जी के तत्व चिंता में नहीं है। जितना मेरा लाभ हुआ है भगवत गीता से, नाम जप के सिवाय और किसी से इतना लाभ हुआ ही नहीं। कितनी विलक्षण बात है, तो नाम जप से और भगवत गीता से बहुत लाभ होता है। नाम जप से लाभ होता है परमात्मा की तरफ चलने में बड़ा भारी, पर गीता से तो सर्वतोमुखी भी विकास होता है, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। नाम जप भक्ति योग का अंग है, उससे भी सिद्धि हो जाती है। इसमें तीनों ही योगों का ठीक तरह से विशुद्ध वर्णन है। इस वाली गीता की महिमा अलौकिक है, बड़ी विचित्र है, कह नहीं सकते हम। इस गीता में मिलती है बातें, इतनी अलौकिक गीता में मिलती है। महात्म देखा जाए तो गीता का महात्म पद्म पुराण में 18 अध्याय गीता है, तो 18 अध्याय में महात्म का वर्णन है। 1800 श्लोक है, उसमें 1100 श्लोक है महात्म में। हर एक ग्रंथ होता है महात्म छोटा होता है और ग्रंथ बड़ा होता है। गीता गीता तो एक ग्रंथ है 700 श्लोकों की, पद्म पुराण में एक जगह 18 अध्याय 1100 श्लोक है महात्म के। एक एक अध्याय का महात्म जा रहा है, 18 अध्याय उसके भी 18 अध्याय है। तो गीता की महिमा क्या कहे, योग वशिष्ठ में गीता की महिमा है, पद्म पुराण में है, बड़ा पुराण में है, महाभारत में है, जगह जगह भगवत गीता की महिमा है। ग्रंथकारों ने लिखी है और टीकाकारों ने बहुत विलक्षण विलक्षण बातें लिखी है, अलौकिक बात लिखी है। गीता गीता पर टीका जितनी हुई है इतनी किसी ग्रंथ पर विवेचनात्मक ऐसी टीका नहीं हुई। पुस्तकें बहुत छाप दी लोग, परंतु पुस्तकों का बहुत छापना हो गया, परंतु गीता पर विवेचन करना, गीता में गहरे उतरना, उसकी टीका करना, ऐसे बहुत ग्रंथ है, बहुत टीका है, हजारों से सैकड़ों, हर एक भाषा में, मारवाड़ी में है, मेवाड़ी में है, गुजराती में है, कर्नाटकी में है, अपने हिंदुस्तान की भाषा में, जयपुरी भाषा में, इन भाषाओं में गीता जी है, गीता जी टीका है, विभीषण किया है। कितनी विचित्र बात है, तो गीता भगवत वाणी है। उपनिषद सब भगवान के श्वास है, यस्य निःश्वसितं वेदा, जिसका निःश्वास वेद है वो भगवान का श्वास है, उससे वेद प्रकट हुए दिशाओं से, और ये भगवान के श्री मुख से उपदेश हुआ है। वेद तो श्वास से निकला है और ये गीता का उपदेश भगवान ने स्वयं किया है, दूसरों को समझाया है, अर्जुन को समझाया है, सब सार सरोपनिषदों का हो, संपूर्ण उपनिषद गौआ है, तो वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता जी, जिसका निचोड़ सार सार इसमें ग्रहण किया है। ऐसा गीता अमृत है, गीता अमृत विलक्षण है, इसका अभ्यास करने से बहुत लाभ होता है, पाठ मात्र से लाभ होता है। हमने तो गीता याद कर ली, याद करने के बाद एकांत बैठ करके, बहुत वर्षों की बात है, एकांत बैठ उल्टा पाठ किया, यत्र योगेश्वर से धर्म क्षेत्र तक पाठ किया, तो जब भी समाधि लग जाए जो विलक्षणता दिखी मेरे को, अलौकिकता दिखी, विचित्र विचित्र दिखे, जो पाठ करे जो विचार करे, तो कभी कभी कई बार तो ऐसा हुआ, एक दिन में दो बार तीन बार चार बार पांच बार गीता का पाठ कंठस्थ करता चला गया, भक्त मिला तो गीता का पाठ किया, पाठ करते करते विलक्षणता आती है, सुनते सुनते विलक्षणता आती है, पढ़ते पढ़ते विलक्षणता आती है, टीकाओं का मनन करते विलक्षणता आती है, भगवत गीता का मूल बहुत विलक्षण मालूम देता है, अलौकिक मालूम देता है। दूसरे ग्रंथ में रामायण की पैरसी पुरुष की तरह रामायण में विलक्षणता है, तो गीता की विलक्षणता बड़ी अलौकिक है, बड़ी विचित्र विलक्षणता है, छोटा सा ग्रंथ है पर छोटे से ग्रंथ में बहुत विचित्रता है, इस ग्रंथ में बड़ा भारी इसका महात्म्य है। गीता पाठ करने वाला मुक्त हो जाता है इसमें, तो संदेह ही क्या है, औरों को भी मुक्त करता है। गीता महात्मा का गीते तुचार्य मानो, गीता गीता ऐसा कहने से मुक्ति हो जाए, मेरी मानव गति भाई कितनी विष्णु बात है। गंगा है नाम ले ले, गंगा तो पवित्र हो जाए, जल से पवित्र हो जाए, भगवत वाणी है वो भगवान के चरणों का जल है, ये भगवान की वाणी का है, भगवत वाणी है विचित्र। मनुष्य माल मापतोल में होता है, परंतु उसकी वाणी में अर्थ होते हैं, उसका अंत नहीं आता, एक मनुष्य भी कितना वो जानकार है ये जल्दी जल्दी मापतोल नहीं होता। जो शांत है मापतोल में आता हुआ मनुष्य, उसके भावों का अंत नहीं होता जल्दी, कितनी जानकारी देखो तो अपार जानकारी होती है। अरे भगवान तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा अनंत है भगवान के, अनंत नाम है, अनंत शरीर है, अनंत जरे अवतार है, 84 लाख अवतार है इतने, उस भगवान की वाणी भावों का क्या अंत है। साधारण मापतोल में आने वाले मनुष्य के भी भावों का अंत नहीं आता, ये कितने जानकर कहाँ तक जानकार है ऐसा मापतोल नहीं लगा सकते। तो भगवान की जानकारी का क्या कहना है, वो जानकारी भगवान ने कह दी। श्रीराचार्य ने जब गीता पर टीका लिखी तो उसके अंदर शेषाशेष मुख व्याख्या दधानम, एक वक्त एक शरीर एक बोध है, शेष भगवान ने, शेष भगवान की महिमा है, उन्होंने शरीर और वाणी और मन शुद्धि करने के तीन लक्षण लिखे। शेष भगवान का अवतार पतंजलि महाराज वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य पढ़ा है ब्रह्मसूत्रों पर, ये ब्रह्मसूत्र नहीं अष्टाध्यायी सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है वाणी की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के तर्क लिखा है, बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ आयुर्वेद का, और जोड़ी का दूसरा ग्रंथ नहीं है। ऐसे ही छंदों का वर्णन किया है, तो कितने वैदिक छंद कितने लौकिक छंद कितने, इधर से वर्णन किया है, और चित्त की शुद्धि के लिए वाणी की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए वाणी और चित्त की शुद्धि के लिए योग दर्शन दिया है। योग दर्शन पतंजलि महाराज एक शरीर की शुद्धि के लिए ग्रंथ का बेजोड़, और जो वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य लिखा जिसमें कुछ बकरी सर गई अधूरा रह गया, उसको कोई पंडित पूरा नहीं कर सका, वो भाव पूरा नहीं हो सका, इतना विलक्षण महाभाष्य। ऐसे विलक्षण योग सूत्र लिखे सूत्रों में, चातपाद में इतनी विलक्षण बातें लिखी साधक की। ऐसे जो शेष है शिष्टाचार्य कहते हैं शेष के अशेष मुख, हजार मुख है, 2000 जीव है, सबके एक जीव एक मुख में दो जीव होती है, तो 1000 मुख है 2000 जीवा है, जिनसे वर्णन किया है यहाँ एक मुख से भगवान वर्णन किया, वो चतुर्य चातुर्य सिद्ध जी कहते हैं मुख एक मुख से भगवान ने वर्णन किया है। तो अलौकिक टीका है गीता है, इस भाव बहुत विचित्र है। गीता का आस्तिक को ले ले तो गीता याद हो जाती है। कलकत्ता में मैं रहता था, एक वेश भाई मुनि में करता था, तो वो मुनि में करता, वो कि मैं गीता सीखना चाहता हूँ, गीता शुद्ध पढ़ना नहीं आता, महाजनी सीखा हुआ हिंदी, हिंदी का बोध नहीं, महाजनी अपने अक्षरों में लिखता था ऐसा, तो गीता में पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पंडित रखू तो पैसा लगे, मुनि में से मेरे घर का खर्चा चलाता हूँ, अब गीता का अध्यापक को इतने पैसा कहाँ से दूं। तो मेरे से पूछा, मैंने कहा तुम ऐसे करो, भगवान की मूर्ति रख लो और गीता रख लो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण है तो क्या तुम्हारा नहीं है? संपूर्ण जगत के गुरु तो मात्र के गुरु भगवान हो गए, जगत से बाहर हो गए आप, तो वो भगवान ने कह कर लो। तो वो गीता सामने रख ली, तस्वीर रख ली, धूप कर दिया, दीपक कर दिया, नमस्कार करके पुष्टता करके वो पाठ करने लगे, 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए, 700 श्लोक मैंने सुने उनके बिना पुस्तक कंठस्थ कर लिया, अशुद्धि बहुत थोड़ी आई, हिंदी का पूरा बोध नहीं, उसने गीता याद कर ली और बहुत थोड़ी अशुद्धि आई और गीता याद हो गई। तो गीता स्वयं ग्रंथ कृपा करता है, इसके शरण देने कोई आश्रित हो जाए तो फिर गीता खुद कृपा करके आते आने लगती, आप साहब भीतर कृपा करते है गीता, ऐसे कृपालु ग्रंथ भगवत गीता, ऐसा रामायण भी है कि प्रासादिक ग्रंथ है, ये विचित्र ग्रंथ है, स्वयं कृपा करते ग्रंथ, ऐसी भगवत गीता है, उसे जितना पाठ करो जितना मनन करो उतना ही और विलक्षणता दिखेगी। नारायण 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 कहां था?